इतने में सामान खोलने लग गए। 65 वलम्मा फतहु मताअहुम, और जब उन्होंने खोला अपना सामान, वजदु बिदुआ अतहुम रुद्दत इलैहिम, तो उन्होंने देखा कि इनकी पूंजी तो इनको लौटा दी गई है। आलू, वो बोले, पुकार के उठे, या बाना मा नबगी, अब्बा जान हमें और क्या चाहिए, हाज ही बिदातुना रुद्दत इलैना, ये हमारी पूंजी भी हमको लौटा दी गई। व नमीरु अहलना व नखफज व खाना व नसदाद कई लबीर, अब हम जाएंगे और अपने अहल याल के लिए गल्ला भी लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट का बोझ ज्यादा लाएंगे। ये एक इजाफी बोझ लाना तो बहुत ही आसान है। ये वो खुशी में बोले हुए सारे जुमले हैं जो इंसान एक्साइटमेंट में बोल देता है, यानी जब उन्होंने सामान देखा, एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि वापस कर दें, गलती से आ गए हैं, बल्कि रख लिए। यहाँ से भी आपको इखलाकी मेयार दिख रहा है। दूसरी बात है कि पैसा आता देख कर वाकई उनका दिल वापस जाने के लिए तैयार हो गया। इससे भी पता चलता है ना कि ये मोहलत देनी चाहिए। यहाँ से एक छोटा सा असूल नोट कर लेते हैं कि वापसी के रास्ते नहीं बंद करने चाहिए, कोई एक दरवाजा खुला रखे, जिसको एज इमरजेंसी डोर ही क्यों ना यूज करना। बस दफा जज्बातियत के नाम पर हम सब दरवाजे बंद कर देते हैं, और वो दरवाजे कोई क्लास रूमों के या मस्जिदों के या मदरसों के या कोई और नेकी के दरवाजे नहीं बंद होते फिजिकल, वो दरवाजे नफ्स की रुकावटें बन जाते हैं। बस दफा इंसान को किसी चीज से ठेस पहुंचती है तो वो उस वक्त एक ही बात कह देता है कि बस आज से सब दरवाजे मेरे लिए बंद। देखिए, खुशी गमी जिंदगी का हिस्सा है, शोहर बीवी की जिंदगी क्यों ना हो या कोई और काम हो, गर्म सर्द होगा, जैसे मौसम बदलते हैं ना, हमेशा होगा। आपके शोहर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कभी ना कभी ज़रूर उनको गुस्सा आएगा, और आप कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, आप कभी ना कभी अच्छी बात ज़रूर करेंगी। कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। ये जो मैंने बात कही और शोहर बीवी का नाम लिया ना, तो मुझे कई बेचारे लोग, बल्कि सिस्टर्स का ही गम याद आ जाता है कि जो ये सोच लेती हैं कि तीन तलाकें हो गई हैं तो बस अब ख़त्म। क्यों? वो सोचते हैं वापसी का दरवाज़ा बंद है। इसीलिए आपको कहता है कि तलाक़ हसना क्यों बेहतरीन रखी गई, एक दफ़ा बोल के चुप, 3 माह गुजर गए, जो तुम चाहते थे वो हो गया, ख़त्म, लेकिन दरवाज़ा खुला। चलो 2 दफ़ा भी ऐसा हो गया, फिर भी चुप कर दो, ये जो 3रे महीने में 3री दफ़ा बोल के जो तुम अपने ऊपर दरवाजे बंद करते हो, तो फिर बाद में उल्टे सुलटे तरीकों से खुलवाने पड़ते हैं। तो ज़िंदगी का असूल याद रखिए कि कभी एक्सट्रीम पे ना जाए। मुझे आज का सबक पढ़ाते हुए इमोशनलिज्म, जज्बातियत और इस तरह के रवैयों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो बार बार जा रही है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत समझदार थे, याकूब आखिर उनके बाप थे, उनको समझ आ गई थी। फिर इसी तरफ देखिए, थोड़ी सी बात अगर हम कर ले बेटों के जुमलों पर, बातें कर रहे हैं दिल तोड़ने वाली और चाहते क्या हैं कि बाप का ट्रस्ट मिले। याद रखिए, ये इंसान को बहुत ज़्यादा परखना चाहिए। हमारा जो सैटरडे का टॉपिक है उसमें आजकल जो अगला टॉपिक है वो यही है कि कैसे हम अपने जुमलों का इसराफ ख़त्म करें। मैं सोचती हूँ कि एक आईना है, तज़किरा नफ्स क्या है, एक आईना है, उसके अंदर खुद को देख ले, कोई आप पे बात नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद पे बातें कर रहे हैं, आपको खुद पता है, लेकिन बात हम छोटी छोटी मसरूफियात की वजह से बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमारी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि हमारा नफ्स सज्ज है, हम सज्ज हैं, हम जाके अंदर पोर्स में से मैल निकलवाने के लिए फेशियल करवाते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के किरदार के धब्बे, मेरे जुमले, मेरी बातें, मेरे एक्शन, मेरी बॉडी लैंग्वेज, इस पर मैं गौर ही नहीं करती। इसीलिए सारी ज़िंदगी हम एक एवरेज ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। ये तो कल जाके पता चलेगा ना कि हम क्या लेके आ सकते थे और हम क्या छोड़ के आ गए। अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब लगा कि अब तो ये लेके ही जाएंगे और इनको जाना है, तो कहा ठीक है, 566 قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ, मैं हर किस ने इसको तुम्हारे साथ भेजूंगा। हु कौन है इधर? बिन यामीन। हाँ, हत्ता अंटिल अनलस, यहाँ तक के क्या तू धूनी मौसिकम मिन अल्लाही, यहाँ तक के तुम मेरे सामने अल्लाह की पुख्ता कस्में खाओ। वही लफ्ज मौसिक जो वसका से, पक्की कस्में खाओ। क्या ला ता तुनन्नी भी कि तुम जरूर इसको मेरे पास वापस लाओगे। किसको? बेटे को। देखिए जख्म वाली जगह जल्दी छिड़ती है। याकूब अलैहि सलाम एक चोट खा चुके थे, अब दोबारा नहीं चाहते थे कि इस तरह के हालात बने, तो कहते हैं कि आप ले जाओ इसको, मैं इजाजत दे रहा हूं, लेकिन देखो कसम खा के कहो कि तुम इसको वापस जरूर लाओगे। हाँ एक सूरत है, इल्ला युहातबिकुम, कि तुम सारे घेरे में आ जाओ। देखिए याकूब की ये बात भी सच हो गई। जब यूसुफ को भेज रहे थे तो भेड़िए का जिक्र किया, तो भाइयों ने वो बात बना ली। अब यहां बिन्यामीन को भेज रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसको जरूर लाना। हाँ जब तुम सभी, मकसद ये कि अकेले ना आना, इसका मसला यह है कि अब तुम सभी घिर गए तो तुम कैसे आओगे, कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि सभी घिर गए तो फिर तुम कैसे आओगे। लेकिन आप देखिए कि अब इस दफा आप इनके साथ देखेंगे यही हो रहा है। यहां से पता चलता है औलाद को जब भी डांटें कोई सख्त बात ना करें, हो जाता है वो, कहते वही हुआ जिसका डर था। याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह से वही बातें निकल रही हैं जो आगे बच्चों के साथ होने लगी हैं। कहा ठीक है मान लेते हैं, फलम माताहु मौसिकहुम, फिर जब उन्होंने अपना आप कौलो इकरार दे दिया, قال الله لا ما نقول وكيل, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जो कुछ हम कह रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। यानी कमिटमेंट हो गई, एग्रीमेंट हो गया और हमने अल्लाह सुब्हान तआला को इसमें वकील बना लिया वो बीच में। अब आप देखिए कि पूरी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह के नाम को बार बार ला रहे हैं, वादे ले रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन अब बाप है ना, तो एक नसीहत जाते जाते करते हैं। 67, قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد, आपने कहा मेरे बेटो तुम लोग एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना, बल्कि وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, बल्कि متفرق दरवाजों से दाखिल होना। बाप बेटों को नसीहत करते हैं कि आप इकट्ठे ना दाखिल होना, अलग अलग दरवाजों से होना। क्यों? नंबर एक, नजरे बद का असर हो सकता है। माशाल्लाह सहराओं के पले हुए 12 जवान एकदम घबरू किस्म के इकट्ठे दाखिल होंगे नजर लगती है। देखिए यूसुफ जितने खूबसूरत ना भी होंगे तो यूसुफ का कुछ तो असर आएगा ना, भाइयों की मुशाबियत होती है। दूसरी वजह यह कि चोरों डाकुओं का डर है, खतरा है। तीसरी बात यह कि दूसरा मुल्क था, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए और नॉन मुस्लिम मुल्क में जा रहे थे, यानी एक नॉन मुस्लिम मुल्क में इमिग्रेंट बन के आ रहे थे और मुस्लिम भी सारे माशाल्लाह अपने रूप में। अब वो आज के दौर में सूटेड बूटेड और पैंट कोट पहने क्लीन शेव तो नहीं होंगे, इस्लामिक गेटअप तो हो गए ना, वो तो नबियों की जितनी तस्वीरें देख लें पिछलियों में सब में आपको दिखता है, जो भी तस्वुरात आते हैं उसमें सब कुछ मिलता है। तो उनको डर था कि इतने मुसलमान एक माशाल्लाह सजे संवरे इस्लाम के रूप में, तो कट्ठे ना जाओ बल्कि अलग अलग चले जाओ, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन वमा उग्नियन को मिन अल्लाह मिन शय, कोशिश तो कर सकता हूँ लेकिन मैं तुमको अल्लाह के फैसले से बचा फिर भी नहीं सकता। ये जुमला है तकदीर और तदबीर का। अटमोस्ट कोशिश कर लें बच्चों को बचाने की, हसद से नजरे बद से शो ऑफ ना करें। आप जो भी अपने आप को अच्छी तरह करवा सकते हैं करा लें, लेकिन जो होना है वो होके रहेगा। ये मतलब है, यानी अल्लाह का कोई फैसला तुम लोगों के लिए है तो मैं टाल नहीं सकता। अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो मैं उसको रोक नहीं सकता। हाँ इंसानी हद तक कोशिश करके जो एहतियात कर सकते हैं वो कर लूंगा, क्योंकि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता है। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने तवक्कुल किया। वअलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और तमाम तवक्कुल करने वालों को इसी पर तवक्कुल करना चाहिए। ये है एक बाप की कोशिशें। क्या पता चला, चंद बातें नोट कर लेते हैं इसमें अमल की। पहली बात है कि बच्चे कितना भी सता लें बाप के दिल में उनकी मोहब्बत रहती है। फिर उसके बाद ये है कि अपनी खूबसूरत चीज़ों का डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हम जितने अच्छे लग रहे होते हैं उतने ज़्यादा सज सज के हम उसको पिक्चराइज करवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई, क्या हो गया। देखिए खूबसूरती छुपाने की चीज़ है, दिखाने की नहीं। नुमाइश नहीं करनी खूबसूरती की। आपको लगता है जिस दिन आपकी बेटियां, आपकी बहुएं, आपकी बीवियां या जो भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, उस दिन उनको और ज्यादा छुपा के रखें। हमारे यहाँ तो मामले ही फर्क है। हम कहते हैं इतने पैसे लगाए हैं तो मूवी भी ना बने और फोटो सेशन भी ना बने और कैमरामैन भी ना देखे बेचारे, इतने गरीब हैं, चलो खूबसूरत लड़कियां ही देख लें, कुछ तो उनके गम दूर हो। फिर इसी तरह एक और चीज इससे पता चलती है कि अपने बच्चों को सेकंड चांस देना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि बेटे पहले गलत काम कर चुके हैं, लेकिन दोबारा चांस दिया। काट के नहीं फेंकना औलाद को, तुम्हें आग करता हूं। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि यूसुफ वाला मामला झूठा है, तो सारों को पकड़ के आग कर देते, तो आज क्या होता, पहले से भी बिगड़ चुके होते। यहाँ अमल की बात है, और बड़े दर्द के साथ कहूंगी कि वो साथी जिनकी औलादें माहौल के रंग में रंगी गई हैं, अल्लाह सबको बचाए पहले तो, लेकिन अपनी औलादों से कभी कतई ताल्लुक ना करें। आप उनके साथ रब्ते में रहेंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि डोरी के रास्ते वापस आ जाएंगे, और अगर बच्चे बिगड़ जाएं और फिर आप उनको कह दें मेरे से बात ना करना, कलाम ना करना, तो आप सोच सकते हैं कि माशरा उनको कैसे लेगा। ऐसा नहीं करना, चांस दें, उनके ईमान का इम्तिहान लें। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ इससे पता चलती है, जो हमने बात की नजरेबद की, तो नजरेबद क्या होती है? हदीस है बुखारी शरीफ की, अल आइनुन हक्कुन, नजरेबद हक है। नबी सल्लम ने, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हुक्म दिया कि नजरेबद से बचने के लिए अल्लाह की पनाह लो। एक बच्ची अल्लाह के नबी के पास लाई गई, तो उसका रंग जर्द था, तो आपने कहा कि इसे नजर लगी हुई है। ये हजरत आयशा की रिवायत है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है कि हम दौरे जाहिलियत में झाड़ फूंक कर लिया करते थे, उससे नजरे बद का इलाज करते थे। अब क्या करें? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि किन कलेमात के साथ करते हो? तो जब सहाबा ने वो सुनाए, उसमें कोई शिरकिया बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल वही बात थी जो कि अल्लाह की पनाह में देने की होती है, तो आपने कहा कि अगर इन जुमलों में शिरक नहीं है तो इसको कर लो। ठीक है, अब हम क्या करें? हमारी भी कोई चीज़ खूबसूरत लगती है कि नहीं? हम कभी खूबसूरत लगे हैं कि नहीं, ये बताएं। इतने दुखी क्यों बैठे हैं हम लोग है? हम तो हर फंक्शन में सोच रहे होते हैं कोई हमसा हो तो आ गया है, और फिर जब उस वक्त हम इनाम देते हैं, प्राइस देते हैं, हु इज द ब्यूटीफुल पर्सन और किसका जोड़ा प्यारा है, ये खुश कर रहे होते हैं लोगों को कि शर्मिंदा कर रहे होते हैं? खुश होते हैं, एक खुश होगा, 25, 30, 50 औरतें नाराज हो देंगी, दिल टूटेगा। शक्लें खुद बनाई हैं, कपड़े किसी के कीमती, किसी ने माँ के कहने पे 2 साल पुराना पहन लिया जोड़ा, कोई कल ही जाके साउथ हॉल से खरीद के लाई, तो वो तो खुश होगी ना, देखा ले आई अम्मी, मुझे इनाम मिल गया। कभी अपनी फंक्शंस में ऐसे काम ना करें, यकीन करें ये गैर इस्लाम नहीं है। बस एक असूल सीख लें, एक को खुश करके सबको नाराज नहीं करना। मैंने देखिए बाज़ दफ़ा हमारे अच्छे अच्छे कामों में गलत काम हो जाते हैं। हाँ आप बात करें, कॉम्पिटिशन्स करवाया करें, तुम्हें एक आयत सुनाओ, तुम सुनाओ, किसकी किरत अच्छी है, किसकी तिलावत अच्छी है, कोई नशीस ना, क्या हम इन चीज़ों से नहीं खुश हो सकते? हमने ज़रूर दूसरों के बोले हुए बेकार और बेतुके जुमले बोलने हैं, न सर न पाऊँ। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ खूबसूरत है, अगर ज़ाहरी खूबसूरती है तो अल्लाह की दी हुई है, इवन अगर कपड़े भी कोई खूबसूरत बनाता है, तो भाई किसी का हौसला है अपने ऊपर 100-200 पाउंड लगाने का, किसी का नहीं है, तो आप तो प्रमोट कर रहे हैं ना कि लगाओ, फिर देखो। और सच्ची बात है, 100-200 लगा के भी कोई लगे अच्छा तो लगे, किस्मत की बात है। आप अपडेटेड कपड़े पहन ले, जाहिर आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कुछ भी नहीं होता, वो उससे भी अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा हम सिस्टर्स का जो प्रॉब्लम है उसकी बात है। क्या करें? जो मुनासिब चीज़ है वो पहन लें, अच्छी पहने, जो आपके पास है ना उसमें से दी बेस्ट पहन ले। आपके पास है ना आप पहन ले, नहीं है तो ना से, आपने 2 दफा पहननी है तो अब 3री दफा भी पहन ले। रोज तो आप उसकी गुलामी करती हैं, आपकी अलमारी में उसने जगह ली है, 4, 6, 10 दफा तो पहन ले, और उसके बाद फिर उसको खराब होने से पहले किसी और को दें कि अब मैंने शौक पूरा कर लिया, अब तुम कर लो। हाँ, मैंने एक पार्टी में एक बच्ची के मुंह से सुना, माँ भी थी, बच्ची भी आई हुई थी, तो कोई उसकी माँ के जोड़े की तारीफ कर रही थी, तो वो छोटी बच्ची थी, उसको नहीं पता मैं सुन रही हूँ, कहती डोंट वरी, आज अम्मी ने पहन ली, अगली दफा मैं नहीं पहनना, हमारा एक ही नाप है। तो मैं हंस रही थी, तो वो तो खुशी होती होगी अम्मी नए जोड़े ले, ताकि अम्मा एक दफा पहने फिर मैं पहन लूंगी। तो बहरहाल ये कि इन पहन ओढ़नों में भी हमारी बहुत सारी इसलाह की जरूरत है, लेकिन यह है कि एक्सपोज ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए, कभी कोई हमें अच्छा लगे तो क्या कहें, माशाल्लाह बारकल्ला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब आप देखिए कोई सिस्टर बड़ा अच्छा जोड़ा पहन के, आप आगे से कह दें ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और वो कुरान नहीं पढ़ी भी तो वो तो माइंड कर देंगी। हमारे कल्चर में बेचारा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का सही कॉन्सेप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता? ला हौला, नहीं कोई घेरने वाला, इल्ला बिल्ला मगर अल्लाह, यानी ये जो नेमत तुम्हें मिली है वाकई अल्लाह ने दी है। इसी तरह किसी को हमने जजाक अल्लाह कहा तो वो बहुत एम्बेरेस हुआ, जो भी बच्चा था या लड़का था, तो उसने कहा नहीं आप मुझे ऐसे ना कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा क्यों ना कहें, मतलब मैं अपनी खुशी से ये काम कर रहा हूँ। तो जब उसको मैंने तर्जमा बताया कि जजा मैंने क्या, काफ मैंने क्या, अल्लाह मैंने क्या, तो कहते मैंने तो इसका इंग्लिश में और तर्जमा पढ़ा हुआ है, क्या आई एम थैंकिंग यू बिफोर थैंकिंग अल्लाह। मैंने कहा ये किसने जजाक अल्लाह का तर्जमा आपको बताया? कहते बुक में लिखा हुआ था। फिर हमने बैठ के उसको बताया तो वो फिर बहुत खुश हुए। मैंने कहा कि आप खैर नहीं चाहते भाई, आप जो हमें एक अच्छा काम दे रहे हैं, एक हमें राइट दे रहे हैं हमारे लिए खैर, तो हम आपको ना कहें कि अल्लाह आपको इसकी खैर दे। कहते आज पता चला कि मुझे फलां ब्रदर भी क्यों हर मौके पर ये कहते हैं। तो इतनी मिसकंसेप्शन है हमारे इन चीज़ों के बारे में, तो इनको रिवाज दें, अपने बच्चों को घर में 20 दफ़ा बोले। मुसलमान डिक्शनरी तो यही होती है, माशाल्लाह इंशाल्लाह बारक अल्लाह सुबहान अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगे दिल में पढ़ दिए, थोड़ी सी जुबान से पढ़ दें। फिर इसी तरह आप देखिए कि आखिरी दो सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक, इसके जरिए हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं उनको बचाना चाहिए। इस तरह इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दम सिखाए हैं जो आप हज़रत हसन और हुसैन के ऊपर पढ़ते थे, इसी तरह हज़रत जिब्राइल का एक दम है। ये सारी चीज़ें आपको इस मुस्लिम में मिल जाएंगी, लेकिन दो तीन चीज़ें सिर्फ इस याद दहानी के लिए दोहरा दूँ कि शायद कोई सुन के सीखना चाहे। तो दो दुआएं तो हैं सुबह शाम की दुआओं में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सुबह शाम ये कलिमा 3 दफ़ा कह ले, कौन से? आउज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन शर्रि मा खलक, मैं आपको अल्लाह की पनाह में देता हूँ तमाम कलिमात से जो उसने पैदा किए, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। क्या इसमें कुछ रह जाता है? नजरे बद हो, चोरों, डाकुओं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, सब चीज़ें, और इसमें कलेमात में सब जादू टूने के कलेमात भी आते हैं, हसद बुगस के जुमले भी आते हैं। इसको 3 दफ़ा सुबह और शाम में पढ़ें। फिर दूसरी जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, ये भी पढ़ेंगे तो फरमाया कि तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। इसी तरह एक दम है उईज़ुका मिन कुल्ली शैतानिम व हामतिम व मिन कुल्ली शैइन लामतिम, ठीक है, तो ये कलेमात भी पढ़े जा सकते हैं। फिर इस तरह एक दम है बिस्मिल्लाह यरकीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका, कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पे उस चीज़ की पनाह में देता हूँ जो तुझे तकलीफ दे। तो इस तरह की चीज़ें पढ़ें। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम कोई नई चीज़ खरीद लें तो हम क्या करें? कोई चीज़ आप खरीद आए तो आप क्या करें? खुश हो, हाँ 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 इतनी अच्छी आ गई, उसकी भी दुआ है। किसको आती है? कभी नहीं खरीदी चीज़ कोई, शॉपिंग नहीं की कभी, अल्लाह हू अकबर। अब ये ना हो कि आज इस दुआ को पढ़ने के लिए फिर आप शॉपिंग करने निकले। नबी सल्लम ने फरमाया जब कोई सवारी खरीदे या गुलाम खरीदे, और इसी तरह शोहर शादी के बाद जब दुल्हन जाती है तो उसके बालों पे हाथ रख के दुआ पढ़े, जो आपने खुद हजरत अली को सिखाई थी हजरत फातिमा से निकाह के मौके पे। वो क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा जबलतहा, ए अल्लाह मैं इस चीज़ की, यानी कोई भी चीज़ है, आप ये माइक खरीदा है चलो भाई अल्लाह इसको अच्छा दे, इसको पकड़ के पढ़ लें, गाड़ी ली है, घर है, कपड़े हैं, हैंगर को पकड़ के पढ़ लें कि अल्लाह इसके अंदर जो खैर है जिस पे तूने इसको पैदा किया मुझे उसकी खैर दे। और फिर इसका अपोजिट भी है कि मुझे इसके शर और इसकी सारी चीज़ों की जो खराबी है उससे बचाए। अगर हमारा दुआओं से शौरी ताल्लुक शुरू हो जाए तो आप देखें कि बंदगी तो खुद ब खुद आ जाएगी। जिनका सवाल है तकदीर और तदबीर का, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए तकदीर क्या है, आप लिखें तकदीर इज इक्वल टू तदबीर प्लस अल्लाह का हुक्म। तदबीर मैंने करनी है, आपने करनी है, उसके साथ जब अल्लाह का हुक्म मिल जाएगा तो तकदीर बन जाएगी। दो चीज़ें मिलती हैं ना तो कोई काम होता है, एक अल्लाह का हुक्म और दूसरी बंदे की तदबीर। माचिस पहले दौर में चलती थी ना, आप देखते हैं कि उसके दोनों तरफ मसाला लगा होता है, डिबिया पे मसाला हो और तीली के साथ ना लगाओ तो रगड़ेंगे कुछ नहीं होगा। और ऑपोजिट हो तो भी नहीं होगा। कब आग लगती है? जब दोनों तरफ जलने की चीज हो। इसको समझे कि डिबिया देना वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फैसला। आप उस पर जब तीली रगड़ते हैं ना, फिर आग लगती है। ना तो खाली तकदीर कुछ है, ना खाली तदबीर कुछ है। इस पर एक पूरा टॉपिक है, आप वेबसाइट पे जाके सुनिए, किताबु दुआ में क्या दुआ तकदीर को बदलती। इतना ही लोगों को उससे फ़ायदा हुआ था कि मुझे याद है, जब ये क्लिप रिकॉर्ड हुआ था, ईमेलों में इन्होंने भेजा था, शायद 20 मिनट का टोटल लेक्चर है, दुआ और तकदीर का क्या ताल्लुक है। तो बल्कि रूम में किसी वक्त मुमकिन हो तो आप लोग सुनवा दें, तो आपका सारे सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है, फिर उसके बाद ना हो, जैसे अभी आप कहेंगे कि उन्होंने वो सब कुछ किया फिर भी वो काम हो गया, तो वही बात आ गई कि तदबीर के आगे तकदीर आड़े आ गई। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि उन्होंने, बेटों ने अपने बाप के मशवरे पे अमल कितना किया। 68 आयत, वलम्मा दखलु मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जब वो दाखिल हुए जहां से इनको हुक्म दिया था इनके बाप ने, यानी यहाँ से पता चलता है कि इतने बिगड़े हुए नहीं थे बेटे, बाप की बात मान ली, कि बाकी फिर एक दरवाजे से नहीं बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए। कहाँ दाखिल हुए? मिस्र में। मां का ना युग्नियन हूँ मिन अल्लाह मिन शैन, वो याकूब बचाने वाला नहीं था इनको अल्लाह के फैसले से कुछ भी। हाँ, मगर इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब अकदाहा, सिवाय इसके कि याकूब के दिल में ख्याल था जो इसने पूरा कर लिया। यानी बेटों ने बाप के मशवरे या हुक्म पे अमल तो किया, इसके बावजूद बाप के दिल में जो खौफ था उससे वो बचा नहीं सके अपने आप को। मुराद यह है कि जो खटक थी वो हुई। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी खटक दूर करने के लिए तदबीर इख्तियार की, बेटों को कहा एक दरवाजे से दाखिल ना होना, लेकिन ये तदबीर अल्लाह के किसी फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, और यकीनन आप साहबे इल्म थे इस इल्म के एतबार से जो हमने आपको सिखाया था। वलाकिन अक्सरन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम नबी भी थे, अल्लाह ने उनको हिकमत भी दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब उन्होंने जो करना चाहा वो कर न सके, अल्लाह का फैसला सादिर हो गया। इससे क्या पता चलता है, चाहे कोई नबी वली क्यों ना हो, अल्लाह का फैसला चल के रहता है। अगर नबी मुख्तारे कुल होते, अल्लाह के नबी जो होते हैं वो अगर अपनी हर बात मना लेते, तो फिर बात हर एक के हाथ में आ जाती। बहरहाल, डिटेल्स को छोड़कर अब अगला मंजर है, आयत 69 से 79 में आप देखेंगे। अब ये भाइयों के साथ दूसरी मुलाकात है यूसुफ की। अब ये स्लॉट्स हैं और इसके बीच की सारी डिटेल्स मिसिंग है। यही कुरान का हुसन है कि इसने लफाजी पे गौर करने, सीरीज उसके बाद, इसके बाद ये हुआ, बल्कि चंक्स की सूरत में अमल की बातों को रखा। आयत 69 को हम देखेंगे, वलम्मा दखलु अला यूसुफा, और जब वो भाई आए यूसुफ के पास, आवा इलैहि अखाहु, तो आपने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया। ये जो आवा इलैहि है ना, आवा यू वी ईवा कहते हैं किसी को पना देना, जगह देना, ठिकाना देना। ठीक है, अब जब आप किसी को जगह देते हैं तो फिर क्या होता है कि यानी उसको दूसरों से अलग कर लेते हैं, और इशारा है बिन्यामीन की तरफ कि बिन्यामीन को दूसरे भाइयों से अलग किया। काल इन्नियाना अखूक, कहने लगे मैं तेरा भाई हूँ। छोटे को बता दिया कि मैं यूसुफ हूँ। कौन सा यूसुफ हूँ? ये जो अना का लफ्ज इधर आ गया ताकीद के लिए आया, हालांकि इन्नी के अंदर ये लफ्ज आ गया था, उसको बता दिया। फला तब तईस बीमा कानू या मलून, तब मत गमगीन होना इस पर जो ये लोग कर रहे हैं। छोटे भाई को तसल्ली दे रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फला तब तईस, तब तईस का लफ्ज इब्तिया सुन से, बा हमजा सीन इसका रूट है, बोस रंजो हुजन अलम तकलीफ। अब भाई को तसल्ली देते हैं कि जो कुछ ये तुम्हारे साथ कर चुके हैं इस पे तुम गम ना खाओ। इससे पहली बात तो मुफस्सरीन ने लिखी कि जिस तरह उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुगज रखा था, सताया था, इसी तरह बिन्यामीन को भी सताते थे। तभी तो वो भाई उनको कह रहे हैं कि तुम्हें भाइयों के इस रवैये पे फिक्र नहीं करना चाहिए, गम ना करो, और जो कर चुके हैं उनको पीछे डाल दो। बहुत खूबसूरत अमल की बात है इधर हम सब के लिए। पहली बात तो यह है कि जब कोई गम दे तो आप उसके साथ कैसा मामला रखें। दूसरी बात यह, जब सगे भाई बहन जमा हो, आप कभी पाकिस्तान जाएं या आपके फैमिली इधर आ जाए, तो दुख सुख के नाम पर दूसरों से पिछले किस्से नहीं सुनने चाहिए। अच्छा सुनाओ फिर, वो पिछले साल क्या हुआ था? कि तुम्हारी सांस क्या करती है, और फोन कॉल तो अब अगले साल पे जाने ही नहीं देता। व्हाट्सएप और वाइबर ने तो मिनट मिनट की खबरें दे दी, अब सास बोली है, अब मैं बोली हूँ, अब मियाँ ये कह गया, अब बाप ये कहे, अब ये हो गया। सारा दिन दुख सुख के नाम पे हम गैजेट यूज करते हैं, मिनट मिनट की खबर होती है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। इवन सिस्टर्स की एक बड़ी अजीब सी आदत होती है, जरा सी घर में एक बल्ब भी नहीं जलता ना मियाँ को खबर दे देती हैं। तो मैं कहीं बैठी हुई थी ऐसे ही, मेरे जहन में जो उसका तस्वर आ रहा है, तो अब हुआ क्या कि एक मैसेज आया, ये हो गया। अब जब वो मैसेज पढ़ने लगा, हो ये हो गया उधर, ये हो गया, फिर चंद मिनट भी नहीं गुजरे, फिर एक मैसेज आ गया, नहीं नहीं ठहरो शायद देखते हैं। यानी आधा घंटा जो मैं वहाँ बैठी, तो जो सिस्टर किसी के साथ चैटिंग कर रही थी ना, हो गया, होने वाला, हो गया, नहीं अब सब ठीक है, अब आप ऑफिस में बैठे रहे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यकीन करें, औरतें अगर पुलिस में काम करें तो बहुत कामयाब हो। तफ्तीश में भाई पहले ही सब्र कर लो, आधा घंटा अगर टेलीफोन उसको ना मिलता तो उसके शौहर को कानो कान खबर नहीं होनी थी क्या हुआ, अब अच्छा नहीं आ रहा, आ गया, अब उधर हो गया, नहीं मिल रहा, ये हो गया, नहीं सब ठीक है। और जब सब ठीक हो तो फिर को नहीं खबर देते दूसरों को, जो घबराहट की खबरें वो दे देते हैं। ये अजीब क्योस बर्पा किया हुआ हमने, तो थोड़ा सा तो अंदर रखें। आपको उम्मे सलमा का वाक्य याद है, बेटा उनका बीमार था और शौहर किसान थे, काम पे गए, पीछे से बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे को नहलाया दहलाया कफना के दूसरे कमरे में रख दिया। शाम को मियाँ देर से घर आए, कहा सुना बेटे का क्या हाल है, कहा पहले से बहुत अच्छा है, पता था सुकून में, कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर सो गया तो सोया हुआ। शौहर को खाना दिया, शौहर की ख्वाहिश पूरी की, जब शौहर की जिस्मानी भूख पूरी हो गई, उनको जज्बाती तौर पर रिलैक्स किया, फिर सो गए। फिर सुबह उठ के कहती हैं कि ये बताओ कि अगर कोई तुम्हारे पास अपनी अमानत रखे तो तुम उसको कैसे दोगे, क्या करोगे जब वो लेने आ जाए। कहेगा शुक्र करूंगा भाई, अमानत का तो बोझ ही बड़ा होता है। तो कहा फिर अल्लाह ने जो अमानत दी थी वो तुमसे ले ली कल वापस, बच्चे का इंतकाल हो चुका है। अब तो वो सटपटाए, उनको लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि बच्चा घर में मैयत पड़ी है और मैं अपने मामले में रिलैक्स हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए फजर के वक्त और जाके बीवी की खबर सुना दी। तो अल्लाह के नबी ने कहा गम ना करो, अल्लाह ने तुम्हारी बीवी के सब्र पर आज की रात में तुम्हारे लिए एक और बच्चे का इंतजाम कर दिया। पहला बच्चा फौत हुआ, कुछ माह बाद अल्लाह ने फिर बच्चा दे दिया। है सब्र इतना किसी में? मैं कहती हूँ वाकई अगर इस सूरत से हम अपने अंदर जज्ब करना, आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ हमारी खत्म हो जाए, अगर हम रिएक्शनरी ना हो और जज्बात में आके एक पटक करता हुआ जुमला ना बोल दें। हाथ से तो कुछ फेंक नहीं सकते ना, औरतें हाथ उठाती हैं ना उठा सकती हैं, उठाएंगी तो खुद ही मार खाएंगी, लेकिन अगर हम जुबान को भी सी लेना तो आप देखें कि आधे से ज्यादा घर बच जाए। खेल विद काइंडनेस, अपने अंदर तहम्मुल रखिए, फिर आप पे ट्रस्ट करेंगे। हर वक्त हिलना और हिलाना, कुछ का तो मसला ही हारों का हौल ना होता। कुछ तो खानदानी तौर पर मशहूर हो जाते हैं कि उनके साथ बंदा नॉर्मल नहीं रह सकता, वो तो हर वक्त ही घबराहट का शिकार होते हैं। तो जिंदगी में खामोशी इख्तियार करें। फिर दूसरी बात देखिए कि भाई को क्या कह रहे हैं, फला तबता इस ना गम करो जो वो कह चुके। यहाँ से अमल की बात है कि पुराने किस्सों को मत दोहराएं, पुराने जख्मों को कुरेदेंगे तो खून और पस निकलेगी। माजी से नसीहत लें और उस गम को भूल जाएं। दूसरे जो दुख देते हैं ना या गम देते हैं उसको भूल दें, वरना क्या होगा, आप खुद को तकलीफ देंगे। आपको कभी कोई आपका रिश्तेदार साथी दोस्त सताए तो सोचिए, मुझे तो इसने कुएं में भी नहीं डाला, मेरे तो कत्ल की भी कोशिश नहीं की, मुझे तो भेड़िए के आगे भी नहीं डाला, मेरे तो खिलाफ ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया, क्या हुआ अगर इसने मुझे एक बात कह दी, मेरी कौन सी शान कट गई। आप देखेंगे यूं गुब्बारे में से हवा निकल के आप रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। यूसुफ करें फला तबतस, डोंट वरी, फिक्र ना करो। और हम ऐसे वक्तों में वो जैसे जख्म कुरेदते हैं ना, आप देखिए जख्म पे खरीड आता है ना तो उसको भरने दें, जरा सा खरीड आए फिर छील दें, फिर खून निकलेगा और आखिर में क्या होगा, वो जख्म हमेशा हरा होगा। कुछ लोग बातें कर करके माजी को भूलते ही नहीं है, उनको आज भी याद है 20 साल पहले जब मैं बहू बन के आई थी तो अम्मा जी ने मेरे साथ क्या किया था, फिर कहते अल्लाह माफ करे मेरी सास को, थी बड़ी जुबान की तेज, यानी अल्लाह तो कर दे माफ मैंने नहीं किया। ऐसा ना करें, जिंदगी को आसान बनाएं। आपको तो कि बंदरों की एक आदत होती है कि जब कोई बंदर जख्मी हो जाता है ना तो सब मिलके टोली बना के उसकी इयादत के लिए जाते हैं, اور پھر سب اس کے زخم میں انگلیاں پھیرتے ہیں. اب بندر یہ کریں تو کریں، کوئی بات نہیں ہے، وہ بندر ہے، لیکن اگر انسان بھی یہی کریں، ہم شروع سے کہانی شروع کرتے ہیں، پھر کیا ہوا تھا، اچھا پھر سنتے بھی فرسٹ ہینڈ ہے، کوئی مرد ہے اس سے پوچھیں گے کیسے جان نکلی تھی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا، بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا، شادی ٹوٹ گئی، کیسے ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا، اچھا پھر یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ہر چیز میں یہ معاملہ کرتے ہیں. تو اپنے لیے سبق لکھی ہے کہ اگر کبھی کسی نے مجھے ستایا اور میں آج تک اس سے روٹھی ہوئی ہوں تو اس کو معاف کر دیں. ایک کال ضرور کریں. پچھلے جب میں نے پڑھایا تو میں نے سب ساتھیوں کو ایک کام دیا تھا، کوئی ایک بندہ سوچیں جن سے آپ ناراض ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا، دکھی دیا، فوراً اٹھیں، ان کو ملنے جائیں. یہاں نہیں ہے تو فون کال کریں، حال پوچھیں، میسج دیں. دل کو نہ صرف یہ کہ صاف کریں بلکہ صاف رکھیں بھی. منہ سے کہنا بہت آسان ہے، میں نے دل صاف کر دیا، لیکن میرے سامنے نہ آنا، یہ غلط بات. اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے اس کو معاف کیا، مثال ہے کہ کسی نے میرا دل دکھایا، ہو سکتا ہے انسان ہے، پھر میں کہتی ہوں میں نے معاف کر دیا، اب میں نے معاف کر دیا، اب یہاں سے میں اٹھی تو گھر جا کے میں اپنے شوہر کو اس کی بات سناؤں گی تو میں اس کی مجرم بن جاؤں گی، کیونکہ میں نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا، پھر میں نے کسی دوسرے سے بات کیوں کی، اس کا وبال پھر مجھ پہ آئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت. اعلیٰ کردار. آج ہم دیکھیں بھائی بہن بیٹھتے ہیں شادی بیاہوں میں، شکوے، گلے، نندوں کی، ساسوں کی، بہوؤں کی باتیں، خود بھی جلتے جلاتے ہیں، دونوں بھائی دکھی ہیں، لیکن دیکھیے کتنا بڑا دل تھا یوسف کا کہ ان کی بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا کر کے کہتے ہیں فلا تبتا اس بیما کا نو یا مرم. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں جب انسان کو کوئی ہمدرد ملتا ہے نا تو غم اور یاد آتا ہے. بچہ گرے خود ہی اٹھ جائے گا، لیکن ماں کو دیکھ لے تو رونا شروع کر دیتا ہے. جب ہمارے ہمدرد ہمیں نظر آتے ہیں نا تو غم بھی یاد آتے ہیں. زخم پر بار بار کھرینڈ اکھیڑیں گے تو کبھی نہیں بھرے گا. ہم مرے ہوئے کو نہیں مرنے دیتے، ہر عید پہ ان کو یاد کرتے ہیں، ہر شادی پہ ان کو یاد کرتے ہیں. خوشیوں میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ ادھر نہیں ہے. اللہ اکبر. مشکل تو ہے لیکن کرنا پڑے گا. کر کے دیکھیں اس کی لذت آپ اپنی زندگی میں، اپنی نمازوں میں اور اپنی عبادت میں محسوس کریں گے.